महामारी के दौरान जहां कोविड के मामले बढ़ रहे थे, वहीं वृद्ध ऑस्ट्रेलियाई लोगों के साथ दुर्व्यवहार के मामले भी बढ़ते नजर आए। वृद्ध लोगों के साथ दुर्व्यवहार को मिटाने के लिए काम करने वालों का कहना है कि इस मुद्दे को संबोधित करना होगा और सबसे पहले बुढ़ापे यानी उम्रवाद से जुड़े कलंक से निपटना होगा। इसी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया में एक परियोजना से मदद ली जा रही है। एक मौलिक रिपोर्ट में जिसमें 2017 की ऑस्ट्रेलियाई कानून सुधार आयोग का पेपर भी शामिल है और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पहले राष्ट्रीय प्रसार अध्ययन में भी माना गया है कि वृद्ध लोगों के प्रति दुर्व्यवहार को रोकने में इस समूह के लोगों के नकारात्मक रवैये से और उम्रवाद से निपटना होगा, जो सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचाना गया है। ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली स्टडीज द्वारा निर्मित पिछले साल क्रिसमस से पहले जारी किए गए शोध में पाया गया कि 6 में से 1 ऑस्ट्रेलियाई ने सर्वेक्षण से पहले 12 महीनों में दुर्व्यवहार को अनुभव किया, जो फरवरी और मई 2020 के बीच में हुआ था। बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार का सबसे आम रूप मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार था, इसके बाद उपेक्षा, वित्तीय दुर्व्यवहार, शारीरिक शोषण और यौन शोषण था। इस समूह में दुर्व्यवहार का अनुभव करने वाले 2/3 लोगों ने इसकी रिपोर्ट नहीं की। मुख्य अपराधी परिवार के सदस्य हैं। न्यू साउथ वेल्स एजिंग एंड डिसेबिलिटी कमिश्नर रॉबर्ट फिट्ज़जेरल्ड का कहना है कि यह विषय एक संघर्षपूर्ण विषय है और वृद्ध लोगों के साथ दुर्व्यवहार को रोकने वाली रणनीतियों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें इस समूह के प्रति दृष्टिकोण भी शामिल है।
During lockdown, the people that report abuse, the people that actually raise the concerns, aren't going into the family homes. The nurses, the disability support workers, the home care workers are not necessarily going into people's homes, and they're not seeing the signs of abuse or neglect that would otherwise happen. When the lockdowns finished, we saw a very substantial increase in the number of calls. We're less sure about what's happening this year because whilst we don't have a lockdown, many people are isolating, and so my expectation is that we will see an increase in the level of reports towards the middle of this year. But at the end of the day, the vast majority of our work is in fact trying to work with re-establishing right relationships, safe relationships within the family unit or the local community setting. At the end of the day, the older person is going to generally live in that same environment, re-establish a safe environment, and that's the most important thing we do in order that the abuse not only stops, that in fact the person can start to thrive again.
Commissioner Fitzgerald का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि इस साल के मध्य में इन मामलों के स्तर में फिर से वृद्धि होगी, क्योंकि समर्थन कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से फिर से अपना काम शुरू करेंगे। उनका कहना है कि लॉकडाउन के बाद रिपोर्ट किए गए मामलों में उछाल आया है। जून 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में 1,777 मामलों का दस्तावेजीकरण किया गया। विकलांगता वाले व्यसकों को लक्षित करने वाले दुर्व्यवहार के 525 मामले जो वृद्ध ऑस्ट्रेलियाई नहीं थे, वह भी दर्ज किए गए थे।
When the lockdowns finished, we saw a very substantial increase in the number of calls. We're less sure about what's happening this year because whilst we don't have a lockdown, many people are isolating. And so my expectation is that we will see an increase in the level of reports towards the middle of this year as we start to open up and as services have started to be provided. And of course, as workers go in and see what's happening in the homes and lives of older people and people with disabilities.
स्वास्थ्य सामाजिक वैज्ञानिक माला कपूर शंकर दास ने पिछले 2 दशकों से दुर्व्यवहार पर एशिया प्रशांत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर शोध किया है, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया और भारत से जुड़े विषयों पर। वह कहती हैं कि इस समूह के प्रति दुर्व्यवहार के लिए प्रभावी नीति प्रतिक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता होगी।
As aging societies, we have to look at a very participatory perspective and we have to enhance our understanding of what aging is. And more importantly, also when I talk of these things is, how are we addressing bringing down ageist attitudes which prevails at many places, be it the workplace, be it the community level, be it in so many of our policies and so forth.
हाल ही में डॉक्टर शंकर दास ने बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भर के सैकड़ों प्रतिनिधि शामिल थे। यह शिखर सम्मेलन इस साल 14 और 15 फरवरी को होबार्ट में हुआ था और सम्मेलन स्थल पर एजिंग माय वे फोटो प्रदर्शनी को भी प्रदर्शित किया गया था। इस प्रदर्शनी में केविन हार्डी और इयन बिक्रॉफ्ट की तस्वीर भी शामिल थी, जिसमें वे हारमोनिका और गिटार बजा रहे हैं। वह दोनों पहले एक स्थानीय टेनिस क्लब में मिले थे, मगर फिर इन्हें संगीत ने जोड़ा और इनकी दोस्ती आज और भी गहरी हो गई है। केविन हार्डी कहते हैं,
म्यूजिक इज अ सब्जेक्ट दैट वुड टेक इयर्स टू मास्टर, बट आई डू नाउ हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड वी प्ले टू द रिटन म्यूजिक। सो वी हैव बीन एट इट फॉर 10 इयर्स एंड आई मस्ट से इयन्स पेशेंस हैज बीन क्वाइट रिमार्केबल बिकॉज़ progress has been very slow at times, but we've persevered and had some success, yes. No, it's nice to be able to just sit back in the recliner and blow off a few tunes of an evening when the lights are low, you know.
एक दशक पहले जब वे दोनों पहली बार मिले थे, तब केविन 80 साल के थे और इयन 66 वर्ष के। केविन ने कभी भी संगीत वाद्य मंत्र बजाना सीखा नहीं था, लेकिन हारमोनिका बजाने की इच्छा थी। संगीत के बारे में बात करके दोनों की दोस्ती में शुरुआत हुई। उनके नियमित जैम सेशन को एजिंग माय वे नामक यात्रा प्रदर्शनी में एक तस्वीर के रूप में भी पेश किया गया था, जिसमें वृद्ध तस्मानीय लोगों ने उम्र बढ़ने पर अपनी इच्छाओं को अच्छी तरह से और स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया था।
Somehow the word harmonica got mentioned. That was the fatal blow. soon as the word harmonica got mentioned, because my main instrument in music is playing harmonica. Look, we just clicked on all fronts, really. I just thought, oh well, I wouldn't mind seeing this man again. So I went out to his house and it blossomed into a very wonderful friendship. I haven't had another friendship like this with someone, you know, a bit older than me.
Tasmania University की पेटा कुक एक समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने अपने शोध में वृद्ध के प्रति दुर्व्यवहार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया है। वे कहती हैं,
An ageism is one of the causes behind elder abuse. Ageism contributes to elder abuse because some people believe that older people are not as worthy or not as important as younger people, and so they shouldn't be entitled to the same rights as younger people. What we also need to do is we need to listen to older people, and older people need to know where to go to get support and help. And that's even if they only want a friendly ear who can just be a supportive mechanism for them.
SBS News से Biwa Kwon की इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है नताशा कॉल ने SBS हिंदी के लिए।